लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरिति की यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर, सिस्टर उषा तिर्की तथा सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को दशकों के सशस्त्र संघर्षों से जूझ रहे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में परस्पर क्षमा का आग्रह करते हुए कहा कि हमें एक दूसरे को हृदय की महान क्षमा प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है। कैथोलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु इस समय कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और दक्षिण सूडान की प्रेरितिक यात्रा पर हैं। उप सहारा अफ्रीका के देशों में यह उनकी तीसरी यात्रा है। अपनी यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को संत पापा फ्रांसिस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किन्शासा के एनदोलो हवाई अड्डे के मैदान में ख्रिस्त्याग समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रवचन करते हुए उन्होंने संघर्षों से जुड़े ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों का भी आह्वान किया कि वे हथियार डाल दें तथा देश के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दें। विश्व को कांगो के लोगों की व्यथा का स्मरण दिलाते हुए प्रवचन में संत पापा ने कहा कि इस देश के लोग लगातार घृणा और हिंसा से संक्रमित घावों से पीड़ित हैं, जबकि कहीं से भी न्याय की दवा और आशा का मरहम आना प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर चाहते हैं कि कांगो के लोग एक दूसरे के लिए हृदय से क्षमा की तलाश करें। उन्होंने कहा, कितना अच्छा होता यदि हम अपने दिलों को क्रोध, आक्रोश और शत्रुता के हर निशान से साफ कर देते। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में व्याप्त संघर्षों में लिप्त ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों से संत पापा ने आग्रह किया कि वे हिंसा का बहिष्कार कर देश के पुनर्निर्माण में योगदान दें। स्मरण रहे कि कांगो गणराज्य की कुल आबादी यानी कि 9 करोड़ में से 50% जनता ख्रिस्तीय धर्मानुयायी है। किन्शासा में बुधवार अपरांत संत पापा फ्रांसिस युद्ध और हिंसा से पीड़ित कांगो के लोगों से मिले तथा उनकी दिल दहलाने वाली दास्ताएं सुनी। इनमें बलात्कार, परिवार विच्छेदन, जबरन नरभक्षण और यौन दास्ता आदि सभी अमानवीय क्रूरता के नमूने शामिल थे। किन्शासा स्थित परम धर्म पीठीय प्रेरितिक राज दूतावास में हुई इस मार्मिक मुलाकात के अवसर पर संत पापा ने युद्ध अपराधों के रूप में किए गए अत्याचारों की कड़ी निंदा की। एक के बाद एक पीड़ितों ने एक विशाल क्रूस की प्रतिमा के आगे झुकने से पहले कुल्हाड़ी, खंजर, नोकदार चाकू जैसी पीड़ा की प्रतीकात्मक वस्तुओं को संत पापा के समक्ष रखा। उत्तरी कीवू प्रांत के एक गांव के 16 वर्षीय लादिस्लाव कम्बले कोम्बी ने बताया कि उन्होंने अपने पिता का सिर काटकर टुकड़े टुकड़े करते हुए देखा था, जबकि उनकी मां को मिलिशिया के लोगों ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद वे अपनी 2 छोटी बहनों के साथ अकेले रह गए थे। क्रूस की प्रतिमा के आगे अपना खंजर रखते हुए उन्होंने संत पापा से कहा, इस तरह के दृश्य देखना खौफनाक है। मैं भूल नहीं पाता हूँ, रातों को मैं सो नहीं पाता हूँ। ऐसी क्रूरता, ऐसी अर्ध पशु क्रूरता को समझना मुश्किल है। और एमेल्डा मकार हुंगलू उन कई महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने यौन हिंसा के अपने अनुभवों को संत पापा फ्रांसिस के समक्ष साझा किया। एमेल्डा ने बताया कि 2005 में जब वे 16 साल की थीं, तब दक्षिण कीवो प्रांत में उसके गांव पर हमला करने वाले विद्रोहियों ने उसका अपहरण कर लिया था। वे उसे एक वन शिविर में ले गए, जहां 3 महीने तक 10 पुरुषों ने हर दिन उसके साथ बलात्कार किया। संत पापा से एमेल्डा ने कहा, हम एक अलग भविष्य चाहते हैं, हम अपने पीछे इस काले अतीत को छोड़ना चाहते हैं और एक सुंदर भविष्य का निर्माण करने की स्थिति में होना चाहते हैं। हम न्याय और शांति की मांग करते हैं। इसी प्रकार 17 साल की बिजॉक्स मुकुम्बी कमला ने 2020 में उत्तरी कीवू में अपने गांव से अपने अपहरण और एक विद्रोही शिविर में 19 महीने की कैद के बारे में बताया, जिसके दौरान एक कमांडर द्वारा हर दिन उसके साथ बलात्कार किया गया था, जब तक कि वह जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती नहीं हो गई। उसने बताया कि कैसे उसके कैदियों ने मार डाले गए पीड़ितों का मांस खाने के लिए अपने बंदियों को मजबूर किया था। अपनी दोनों बेटियों को, एक को अपने आगे और एक को अपनी पीठ पर ले जाते हुए कमला ने क्रूस की प्रतिमा के समक्ष जाने से पूर्व एक छोटी सी चटाई बिछाई, जो उसके अतीत की अधीनता का प्रतीक था। संत पापा ने उसका और उसकी बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा, आपने अपनी आंखों से जो अमानवीय हिंसा देखी है और व्यक्तिगत रूप से अनुभव की है, उसे सुनकर हम स्तब्ध हैं। हम बिना शब्दों के रह गए हैं। हम केवल मौन में रो सकते हैं। कोम्बी, एमेल्डा, कमला और अन्य पीड़ितों ने संत पापा के सामने घुटने टेके, जिन्होंने अपना हाथ उनके सिर पर रखा और बारी बारी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। स्मरण रहे कि पूर्वी कांगो दशकों से सरकार, विद्रोहियों और विदेशी आक्रमणकारियों के बीच विशाल खनिज भंडार के नियंत्रण के लिए संघर्ष का रंगमंच बना हुआ है।
पीड़ितों के साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा ने उन्हें अपने संदेश में कहा, पूर्व के प्रिय निवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपके करीब हूँ। आपके आंसू मेरे आंसू हैं, आपके दर्द मेरे दर्द। गांव के जलने और अन्य युद्ध अपराधों से दुखी या विस्थापित हुए हर परिवार या उन हिंसा से पीड़ित और हर घायल बच्चे एवं वयस्कों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके लिए ईश्वर का दुलार लाता हूँ। वे आपको कोमलता और करुणा से देखते हैं, जबकि हिंसक आपके साथ बंधक के रूप में व्यवहार करते। हमारे स्वर्गीय पिता आप प्रत्येक से कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। भाइयों एवं बहनों, कलीसिया हमेशा आपके साथ है और रहेगी। ईश्वर आप सभी को प्यार करते हैं, वे आपको कभी नहीं भूलते। ईश्वर के नाम पर पीड़ितों और न्याय, शांति और भाईचारा के लिए काम करने वाले सभी लोगों के साथ मैं हिंसा, नरसंहार, बलात्कार, गांव के विनाश और कब्जे एवं खेतों तथा मवेशियों की लूट करने की निंदा करता हूं, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हो रहा है। देश की संपत्ति पर अवैध शोषण और नियंत्रण करने के लिए देश को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह जानकर दुख होता है कि असुरक्षा, हिंसा और युद्ध जो इतने सारे लोगों को दुख दे रहा है, निजी हितों और लाभ के लिए न केवल बाहरी ताकतों द्वारा बल्कि भीतर से भी अपमानजनक रूप से प्रेरित है। मैं विनम्रता पूर्वक अपना सिर झुकाता और अपने दिल में दर्द के साथ मनुष्य के खिलाफ मनुष्य की हिंसा के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ। पिता, हम सभी पर दया कर, पीड़ितों और दुखियों को सांत्वना दे, उन लोगों के दिलों को बदल दे जो क्रूर अत्याचार करते हैं, जो पूरी मानवता को शर्मसार करते हैं। उनकी आंखों को खोल दे जो इन घिनौने कामों को देखने से इनकार करते अथवा उनसे दूर हो जाते हैं। संत पापा ने डीआर कांगो में युद्ध भड़काने वालों से जोरदार अपील करते हुए कहा, उनके खून की पुकार सुने, ईश्वर की आवाज सुने और अपने अंतःकरण की भी आवाज सुने। अपना हथियार रख दें, युद्ध का अंत करें। बस गरीबों की कीमत पर अमीर बनना बंद करें। संसाधनों और खून से सने पैसों से अमीर बनना बंद करें। उन्होंने कहा, हमें बिना किसी अपवाद के हमेशा हर जगह हिंसा को नहीं कहना चाहिए। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा को नहीं कहने का मतलब हिंसा से बचने से बढ़कर है। इसमें हिंसा की जड़ों को खत्म करना है। तब संत पापा ने नहीं त्यागने के लिए लोगों का आह्वान करते हुए कहा, मैं पुनः एक बार उन सभी लोगों को निमंत्रण देता हूँ, आप बेहतर भविष्य का निर्माण करने की प्रतिबद्धता का त्याग न करें। पूर्व में भी शांति संभव है, आइए हम इस पर विश्वास करें, हम इसके लिए काम करें। संत पापा ने मेल मिलाप को हाँ कहने का प्रोत्साहन दिया तथा एक दूसरे को माफ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, सिर्फ इसी तरह हम बुराई पर जीत पा सकते हैं जैसा कि यीशु ने क्रूस पर किया। उन्होंने इसे अपने लिए स्वीकार करते हुए प्रेम में बदल दिया। उसके बाद संत पापा ने उन लोगों को धन्यवाद दिया और उन्हें आशीष प्रदान की जिन्होंने शांति के बीज बोने का काम किया है। अपने संदेश के अंत में उन्होंने पूर्व के लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया तथा उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा, ईश्वर आपके हृदयों को, आपके परिवारों को और समस्त लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो में शांति भर दे।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन का समापन संत पापा फ्रांसिस ने किनशासा में अनेक लोकोपकारी और धर्मार्थ संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर किया तथा सर्वाधिक कमजोर लोगों के प्रति इन संस्थाओं के उदार और कीमती कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। किनशासा स्थित परम धर्म पीठीय प्रेरितिक राज दूतावास में बुधवार को संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि लोकोपकारी संस्थाएं एक जंगल की तरह हैं जो चुपचाप अपना काम करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं तथा अनवरत जारी रहने वाली हिंसा और अन्याय के शोर के बीच भी फल उत्पन्न करती हैं। संत पापा के साथ मुलाकात हेतु 6 लोकोपकारी और धर्मार्थ संगठनों एवं संस्थानों के संचालक उपस्थित थे जिन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन किया और गरीबों एवं हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और मानव विकास के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को प्रस्तुत किया। इनमें विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं, हानसेन रोग और अन्य बीमारियों से प्रभावित लोग भी शामिल थे। उक्त भेंट का उद्देश्य बताते हुए संत पापा ने कहा कि लोकोपकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलकर वे देश में उन कई पुरुषों और महिलाओं की पीड़ा, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा भेदभाव के शिकार और हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की आवाज बनना चाहते थे। उन्होंने कहा, गरीबी और अस्वीकृति मनुष्य के खिलाफ एक अपराध है जो उनकी गरिमा का हरण करता है। उन्होंने कहा, गरिमा बहाल करके ही हम मानवता की बहाली कर सकते हैं।
बुधवार को किनशासा के प्रेरितिक राज दूतावास में कुछ लोकोपकारी और धर्मार्थ संस्थाओं के प्रतिनिधियों के एक समूह को संबोधित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने उनके कामों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी गवाही में केवल सामाजिक समस्याओं या गरीबी के आंकड़ों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबों के बारे में स्नेह के साथ बात की गई, नाम और चेहरे वाले लोग जिनसे ख्रिस्तीय मुंह मोड़ नहीं सकते। संत पापा ने कहा, आज बहुत से लोग गरीबों को छोड़ देते हैं जबकि आप उन्हें गले लगाते हैं। दुनिया उनका शोषण करती है और आप उन्हें संभालते हैं। यह देखते हुए कि मीडिया दुर्भाग्य से DRC और पूरी अफ्रीका में विशाल प्रतिभाओं और सच्ची मानव एवं ईसाई भव्यता की कहानियों को ज्यादा जगह नहीं देता है, संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि उनके साथ मिलकर वे इस वास्तविकता और देश में कई पुरुषों और महिलाओं की पीड़ा, हिंसा, दुर्व्यवहार, भेदभाव और हाशिए पर रहने वालों के लिए आवाज देना चाहते हैं। संत पापा ने कहा कि कठिनाइयों के बावजूद उनकी कड़ी मेहनत फलदायक है, जैसा कि उनकी कहानियों से साबित होता है। यह दर्शाता है कि अच्छाई फैलती है। यह निवृत्ति या आंकड़ों से पंगु नहीं होती, बल्कि हमें दूसरों को वह देने के लिए प्रेरित करती है जो हम स्वयं स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। युवा लोगों को विशेष रूप से इसे देखने की आवश्यकता है। उन्हें ऐसे चेहरों को देखने की जरूरत है जो लोगों की आंखों में देखकर उदासीनता को दूर करते हैं और ऐसे हाथ जो हथियार नहीं चलाते हैं या धन का दुरुपयोग नहीं करते, लेकिन उन लोगों तक पहुँचते हैं जो जमीन पर हैं। उन्हें ईश्वर के बेटे और बेटी के रूप में उनकी गरिमा को वापस देते हैं। संत पापा ने याद दिलाया कि गरीबी का कारण वस्तुओं या अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि उनका असमान वितरण है। गरीबों के लिए यीशु के प्रेम की गवाही का एक उपयोगी रूप बनने के लिए कैथोलिक चैरिटी संगठनों द्वारा 3 मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। पहला मानदंड है अपने वित्त के प्रबंधन में विश्वसनीयता, पारदर्शिता और दक्षता का एक उदाहरण स्थापित करना। दूसरा मानदंड दूरदर्शिता है, जो न केवल गरीबों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि सतत विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना है, जो उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। तीसरा मानदंड है कैथोलिक संगठनों का आपस में जुड़ना, एक साथ नेटवर्किंग करना और ख्रिस्टीय समुदायों, अन्य धर्मों और मानवतावादी संगठनों के साथ बिना अलग थलग रहे एक दूसरे के साथ सहयोग करना। अंत में संत पापा ने कोंगो के कैथोलिक चैरिटी संस्थाओं को आशीर्वाद दिया और एक बार फिर उनके बहुमूल्य कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आप बहुत मूल्यवान हैं।
गुरुवार को लोकतांत्रिक गणराज्य में अपनी यात्रा के तीसरे दिन संत पापा फ्रांसिस ने देश के युवाओं और धर्म शिक्षकों से मुलाकात कर उन्हें अपना संदेश दिया। शुक्रवार को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लोगों से विदा ले संत पापा फ्रांसिस दक्षिण सूडान की ओर प्रस्थान करेंगे।
पोप फ्रांसिस ने डीआर कांगो में अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान बृहस्पतिवार को वहां के युवाओं एवं प्रचारकों से किनशासा के शहीद स्टेडियम में मुलाकात की। उन्हें संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा, प्रिय मित्रों, ईश्वर ने आपके हाथों में जीवन के वरदान, समाज के भविष्य और इस महान देश के भविष्य को रखा है। अपने हाथों को छोटा, कमजोर, खाली और अनुचित होने ना दें। इतिहास में कोई भी आपका स्थान नहीं ले सकता, इसलिए अपने आप से पूछें, मेरे हाथ क्या करते हैं? क्या ये निर्माण करते अथवा तोड़ते हैं, देते अथवा हत्याते हैं, प्रेम करने या घृणा करने का काम करते हैं? क्या आप अपनी मुट्ठी बंद कर लेते या खोलते हैं ताकि ईश्वर और दूसरों को दान कर सकें? यह हमेशा एक मौलिक चुनाव है, जैसा कि कैन और हाबिल ने किया। संत पापा ने हाथ के पांचों उंगलियों को देखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा, हमारा अंगूठा हमारे हृदय के करीब है और इसलिए यह प्रार्थना का प्रतीक है, जो हमारे जीवन को प्रेरक शक्ति प्रदान करता है। प्रार्थना हमारे भविष्य के लिए एक मौलिक चीज है और हमें ईश्वर की वाणी को सुनना है तथा आंतरिक रूप से बढ़ने के लिए हमें एक सजीव प्रार्थना की जरूरत है। यीशु ने बुराई पर विजय पाई है, उन्होंने अपने क्रूस को पुनरुत्थान का सेतु बनाया है, अतः अपने हाथों को हर दिन उनकी ओर उठाएं, उनकी स्तुति एवं महिमा करें। हमें यीशु के साथ एक अच्छे मित्र की तरह बातें करनी चाहिए, अपने भय को उन्हें दे देना चाहिए और उन्हें अपने जीवन के गहरे रहस्य के बारे बताना चाहिए। संत पापा ने कहा, ईश्वर इस तरह के जीवित, ठोस और दिल की प्रार्थना पसंद करते हैं। इस तरह वे अपनी शांति की शक्ति के साथ हमारे बीच आएंगे। तब संत पापा ने तर्जनी की ओर ध्यान खींचा, जो समुदाय का प्रतीक है। उन्होंने डीआर कांगो के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने को एक दूसरे से अलग ना करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों को अपनाएं जो अकेले हैं अथवा पीड़ित हैं। संत पापा ने नशीली दवाओं या जादू टोने के प्रयोग का नकारात्मक उदाहरण दिया, जो बुरी लत में पड़े व्यक्ति को शक्तिशाली महसूस कराता है, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति को उसकी हर प्रिय चीज से वंचित कर देता। सोशल मीडिया भी लोगों को दिशाहीन कर सकता है। एक साथ रहने से हमें जो ऊर्जा, हमारी आंखों में जो चमक, विचारों के आदान प्रदान से जो खुशी मिलती है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। अतः कांगो के युवाओं को समुदाय का निर्माण करना चाहिए, भाईचारा स्थापित करना और एक अधिक एकजुट विश्व का सपना देखना चाहिए। संत पापा ने कहा कि निष्ठा बेहतर भविष्य के लिए तीसरी सामग्री प्रदान करता है तथा भ्रष्टाचार के कैंसर के लिए एक औषधि भी है। उन्होंने डीआर कांगो के लोगों से जोरदार अपील की कि वे हर प्रकार के भ्रष्टाचार का बहिष्कार करें। तब संत पापा रिंग फिंगर की ओर बढ़े, उसे क्षमाशीलता का प्रतीक बताया। क्षमा करने का अर्थ अतीत को भूलना नहीं है, इसका अर्थ है इसे दोहराने से इनकार करना। संत पापा ने कहा कि कनिष्ठ उंगली हमारी आखिरी और सबसे छोटी उंगली है और हमारी सेवा का प्रतिनिधित्व करती है। अंत में संत पापा ने कांगो के युवा कैथोलिकों से बेहतरी के लिए काम करने का आग्रह किया।
इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।